फिर और कामयाबी के लिए क्या चाहिए? वह अतीउ अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हर काम में ही जरूरी है, हर काम में। और पहले भी इस पे बहुत बात आ चुकी, कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुना जाए, माना जाए। इताअत होती क्या है? क्या होती है इताअत? बात मान लेना बस, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। इताअत किससे है? तौ अन से, ये याद रखिए। अब तो वाव आइन, खुशी से मानना, खुशी से तामील करना हुक्म की। बाज दफा हम मान रहे होते हैं लेकिन खुशी से नहीं कर रहे होते वो काम, मारे बांधे का, मजबूरी का, जैसे हमें किसी ने पता नहीं क्या मुश्किल में डाल दिया, वह दिल की तंगी के साथ कर रहे होते। तो वो बात तो ना बनी, वो तवान से तो ना हुआ ना, इताअत तो ना हुई। तो सिर्फ अल्लाह की बात मान जाना इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि उसको खुशी से मान जाना, तब है आपकी तरफ से इताअत। ठीक है, और इताअत नंबर टू, एक इन पॉइंट इसमें एक और ऐड कर लें। इताअत ये नहीं होती कि हुक्म सुन लिया अब उसके बाद सोच में पड़े मैं, अच्छा कोई मौका आएगा तो फिर करूंगी, अच्छा जब ये हालात होंगे तो फिर ये करूंगी, अच्छा बस ये काम हो जाए ना उसके बाद करूंगी। ये कौन सी इताअत है? इताअत तो ये है समयाना वो आताना, जो सहाबा का तरीका था। हमने सुन लिया, हमने मान लिया, उस काम को फौरी कर लें। जो लोग इसमें डिले करते हैं वो याद रखें, सुन के जब अमल करने में आप जब भी डिले करेंगे ना, वो अमल कभी हो ही नहीं सकता, वो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। जो इंसान सुन के फौरन मान जाता है ना, वो ही उस काम को कर ले पाता है। और जो सुन के सोचों में पड़ जाते हैं, तो बड़े लोग हमने देखे हैं वो साल से सोचों में ही पड़े हुए हैं, उनकी सोचें ही नहीं खत्म हो रही, वो सोचते ही रहते हैं कल, नहीं, उसके बाद वो कल आ गया तो उसके बाद एक और कल, उसके बाद एक और कल। हमने पिछली दफा बात की थी ना, दिल के अंदर ही तंगी आ जाती है इताअत में, दिल ही नहीं फिर मानता, और क्या पता कल को दिल ही बदल जाए। अल्लाह अकबर। तो इसलिए इताअत, और जंग के मैदान में भी इताअत को नहीं भूलना, इसलिए कि जंग ऐसी होती ना जिसमें इंसान कहता है अब बस, अब किसकी इताअत है, अब तो जंगी जनून जो है जब इंसान के सर पे सवार हो जाता है तो उसको कुछ नहीं समझ आती, वो अंधा हो जाता है, तो अब किसकी इताअत, कुताअत ही नहीं याद रहनी, जो मर्जी करो, जंग है ना जो मर्जी करो। जंग के तो कहते हैं कोई उसूल ही नहीं होते, बस ठीक है जंग है तो सारी चीज ही जायज है इसमें। तो आप देख लें मुसलमान ऐसी जंग नहीं लड़ता। एक जंग में हजरत अली ने जब होते ना यहूदी, तो उसको कत्ल करने लगे, वो गिरा हुआ है, तलवार उठाई हुई है, तो उसके ऊपर अभी वार करने लगे हैं कि उसने ना इनके मुंह पे थूक दिया, तो इन्होंने फौरन तलवार खींच दी, वापस ले ली। वो हैरान हुआ, इनको इनको क्या हो गया, बल्कि तो और ज्यादा मारना चाहिए ना। तो पूछा तो फरमाया इसलिए कि पहले मैं अल्लाह की खातिर लड़ रहा था, लेकिन अब जब तूने मेरे मुंह के ऊपर थूका तो मेरा गुस्सा इसके अंदर शामिल हो गया। तो ये ना हो कि मतलब मैं कत्ल करूं तो मैं अपने गुस्सा मेरा उसके अंदर शामिल हो कि मैं अपनी वजह से कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, देखिए ना उनके कामों में इखलास फिर कैसा होता था, कि अब मेरी अपनी भी बात अंदर आ गई ना, तलवार वापिस हटा ली। तो अतीउ अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की। वला तनाजाओ, और ना तुम बाहम झगड़ो, तो झगड़ना भी नहीं है। या अब जंग के हालात में अगर फौजी आपस के अंदर इख्तलाफ का शिकार है, झगड़ रही है आपस के अंदर, एक दूसरे से कटे पड़े हैं, तो क्या होगा? वतफशलू वतजहबा रीहुकुम, ये उसका नुकसान होगा, तो तुम कम हिम्मत हो जाओगे, बुजदिली आ जाएगी तुम्हारे अंदर। अगर आपस के अंदर झगड़े होने लगे तो उसका नतीजा ये होगा कि बुजदिल हो जाओगे। जाहिर है जब आपके अपने साथियों के साथ ही क्लैश है तो फिर क्या रह गया? और वतद हवा रही हुकुम, और तुम्हारी हवा जाती रहेगी, यानी तुम्हारा कोई रोब नहीं रहेगा दुश्मन पे। तुम्हारे दुश्मन को भी तो फिर मौका मिल जाता है ना, ये तो खुद खटे फटे हैं, इनके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर वाली बात है ना, कि जो लोग खुद तकसीम है उनको फतह करना बड़ा आसान होता है, इसीलिए दुश्मन की हमेशा ये कोशिश होती है इनके अंदर फूट डाल दो, आपस में इनके अंदर फूट होगी तो क्या लड़ेंगे, एक होके तो नहीं लड़ सकते ना। तो हमेशा से लोगों का यही तरीका रहा बादशाहों का भी, के डिवाइड एंड कॉन्कर। तो लेकिन जीतने के लिए क्या जरूरी है, एक हो जाओ, इख्तलाफ खत्म कर दो। अच्छा आपको ये बताऊं कि सहाबा की कामयाबी का ये याद रखें कि राज क्या था, उनके दरमियान यानी राय का इख्तलाफ तो मौजूद था, राय में इख्तलाफ हो सकता था, एक सहाबी ने कुछ राय दी दूसरे ने कुछ और दी, वो कहता है मैं ये बात समझता हूँ ऐसे है, दूसरा कहता है मैं लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में एक होते थे, वो कभी ये नहीं कहते थे इसने मेरे खिलाफ ये बात की थी, मैंने ये कहा था इसने ये कहा, तो आपस में कट फट जाएं और आपस के अंदर उन एक दूसरे के साथ दुश्मनी लेके बैठ जाएं या कुछ ऐसे करें, नहीं ये उनके अंदर नहीं था। और किसी भी अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले को यही असूल अपनाने चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आप अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, अच्छा जंग का बात नहीं हो रही, किसी भी अल्लाह ताला के रास्ते का काम हो रहा है, बल्कि दुनियावी काम भी हो तो उसके अंदर अगर आप आपस में कट फट जाते हैं ना, तो होता ये है कि आप काम को सही तरीके से अदा नहीं कर सकते, वो काम सही हो ही नहीं सकता जहां पे ऐसी सूरत हाल हो कि लोग एक दूसरे से लड़े पड़े हैं, लड़ाइयां हैं इनके दरमियान। ना तुम बाहम झगड़ो, वला तनाजाऊ, ना तुम बाहम झगड़ो, झगड़े से परहेज करें, झगड़े झगड़े को अवॉइड करें। जब भी लोग मिलजुल के काम करते हैं तो देखें इख्तलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक नेचुरल बात है, जाहिर है हर बंदा अपने मुताबिक सोचता है, उसकी अपनी अकल है और इसमें कोई हरज नहीं है, आप अपने मुताबिक सोच सकते हैं, तो आपकी राय का इख्तलाफ होगा जरूर, हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से है, हर एक का डिफरेंट नॉलेज है, हर एक की डिफरेंट एजुकेशन है, वो अपनी अपनी तरह से हर कोई सोचता है, लेकिन दूसरों के साथ चलने के लिए और उनको साथ रखने के लिए जरूरी है कि इंसान के खिलाफ भी कोई चीज हो तो वो क्या करे, सब्र करे, वसबिरु, इसलिए अगली बात यही है, सब्र करे, इग्नोर करने की आदत डालें, अपनी राय पे इतना ना जम जाएं कि मैंने ये कहा और उसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं कि बस ये ही होना चाहिए, वरना तो मुझे कबूल ही नहीं है, वरना तो मैं नहीं कर रही काम, वरना लड़ने बैठ जाएं, उससे झगड़ रहे हैं, उससे झगड़, ये सब्र है कि इंसान उस वक्त अपने आप को रोक ले, झगड़ों को अवॉइड करें, जो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई अगर फैसला हो जाता है उस काम में तो उसके ऊपर बर्दाश्त करें, ये नहीं कि बस मैंने अपनी बात मनवानी और अपनी चलानी है, तो फिर तो काम नहीं हो सकेंगे ना, झगड़े ही झगड़े होंगे वहां पे, जहां पे झगड़े होंगे वहां पे क्या है, जहां पे झगड़े होते हैं, जहां पे इस तरह के फसाद होते हैं, कीने होते हैं, अदावतें होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मूंड देने वाली चीजें, मूंड देने मतलब शेव कर देने वाली, किस चीज को शेव करती हैं ये चीजें, जब भी मुसलमानों के आपस में इस तरह की चीजें होंगी ना, आपस की नाचाकी बदसलूकी, अब पहले भी हमने आयात पढ़ी है ना, जब शुरू हुई ये सूरा, आपस में इस्लाह, आपस के ताल्लुकात सही रखने, तो फरमाया ये मूंड देने वाली किसको मूंडती, दीन को मूंड देती, शेव कर देती, जैसे उस तरह से आप पकड़ते हैं ना ये जो उस तरह, या इसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखिए मेरे जहन से निकल गया, खैर जो भी शेव करने का जो ये, हाँ रेजर जो होता है, रेजर से जब आप फेरते हैं तो कैसे बाल शेव हो जाते हैं, इस तरह ये दीन को शेव कर देता, दीन ही नहीं रहता इन बातों की वजह से, अल्लाह हू अकबर। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि ये झगड़े आपस की ये कितनी बुरी चीज है। लोग आप देखें जब दिल में बातें रख ले ली जाती हैं ना, तो फिर उसके बाद होता ये है कि क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, हम पर्सनल ले लेते हैं बातों को, ये नहीं कहते कि हम इग्नोर करते हैं, उसको दिल में बिठा के बैठ जाते हैं, फिर दूसरों के खिलाफ बातें होने लगती हैं, उनकी कीर्तन देखो फलाना ऐसा, उसको इश्यू बना लेते हैं, फिर मैंने नहीं उससे बात करनी, उसने नहीं उससे बात करनी, तो काम कैसे होगा फिर? इसलिए कि पर्सनैलिटीज आगे आ गई और दीन का कॉज पीछे चला गया। कॉज को तो नुकसान पहुंचेगा ना फिर, जब आपस में दिल फटे होंगे। इसलिए टीम वर्क जरूरी होता है, टीम वर्क, एक टीम बन के चले। बाज दफा ये होता है, हाय कहीं ये मेरा काम ना ले ले, मैं ही बस आगे बढ़ बढ़ के बड़ी बनी रहूं, कहीं दूसरे को मैं कोई काम ना दूं, उससे मैं कोई काम उसको आगे आने ही ना दूं, तो इसके फिर नंबर बन जाएंगे। नहीं, आप जिसको काम सिखा के उसको किसी काम पे लगा देते हैं तो वो भी आपके लिए सदका जारी है। तो ये जब चीजें जब ऐसी लेग पुलिंग होने लगे, मारा मारी होने लगे, एक दूसरे के साथ दिल वो ना आगे चला जाए, मैं आगे हो जाऊं, एक दूसरे के लिए इल फीलिंग्स हैं, बुरे जज्बात हैं दिल में, बदजनी है, बदगुमानियां हैं, तो फिर उसके बाद मुझे बताएं उसको और का रह क्या जाएगा? फेलियर ही होगा ना। और जंग के मैदान में तो फिर ये बिल्कुल वो है कि फिर दुश्मन को मौका मिल जाएगा। तो खटे पटे लोगों को शिकस्त देना कौन सा मुश्किल है, जो आपस में ही जुड़े नहीं है इन्होंने क्या लड़ना? और याद रखें, जो आपस में जुड़े होते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, यानी जो मिल के काम करने वाले, टीम, जो टीम होती है उसके ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। मतलब क्या अल्लाह का हाथ होता है? अल्लाह की मदद होती है उनके साथ, और जो कटे फटे लोग हों उनके साथ तो कोई किसी कोई अल्लाह की मदद नहीं होती। शैतान तुड़वाता है, फसाद डलवाता है, एक दूसरे से दिल खराब करवाता है। इसलिए झगड़े जहां पे हो वहां से बरकतें उठ जाती हैं, जंग हो चाहे चाहे दीन का कोई काम, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अल्लाह हू अकबर। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले भी आपको ये हदीस बताई थी कि मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, जो रोजा, नमाज, सदका, इससे भी अफजल है, यानी नफली की बात हो रही, नफली की। और वो क्या है? आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, सलूक, आपस में सुलह करना, और सुलह करवा देना, ये रोजे, नमाज, नफली रोजा और नफली रोजे और सदका और खैरात से भी बड़ी नेकी है, क्योंकि इतना जरूरी है कि आपस के अंदर जुड़े रहें, दिल आपस में मिले रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 1 साल से अपने मुसलमान भाई से सुलह ना की, यानी उसके साथ दोबारा उसके साथ दोबारा कांटेक्ट ना बनाए, यानी उसके साथ दोबारा बातचीत ना शुरू की, तो उस पर इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है जितना कत्ल का गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है उसके ऊपर। तो यानी ये बहुत बड़ी बातें हैं, हम इनको शायद इतना सीरियस नहीं लेते। तो तनाजा नहीं करना, अल्लाह और रसूल की इताअत करनी है, तनाजे से बचो। देखिए, आप सोचते होंगे तो जंग के अंदर कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, आप खुद ये भी तो सोचें कि जिंदगी भी तो एक जंग ही है, जंग का मैदान है, जिसमें इंसान शैतान के साथ जंग में, उसके साथ जंग लड़ रहा है। तो आपस में तनाजा ना करो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, तुम कम हिम्मत हो जाओगे, तुम्हारे कोई रोब नहीं रहेगा, बस भी रो, सब्र करो। अब हम कहते हैं सब्र करना तो बड़ा ही मुश्किल है, कैसे सब्र करें अब ऐसी सिचुएशन में, मैं कैसे सब्र करूं, उसने ऐसे कह दिया, वो कर दिया, तब याद रखने की क्या बात है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये चीज आपको हौसला देगी सब्र करने में, ये आपको मदद देगी सब्र करने में, ये आपसे सब्र कराएगी। वला तकूनू कल्लदीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन, और ना हो जाना उन लोगों की तरह, यानी उनकी मुशाबिहत ना इख्तियार करो, उनके जैसे रंग ढंग इख्तियार ना करो, उनको कॉपी ना करो। किनको किनको ना कॉपी करें? अल्लदीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन, जो अपने घरों से निकले इतराते हुए, बड़े एरोगेंस के साथ, शो ऑफ करते हुए, रिया नास, शो ऑफ करना, वह यसुद्दून आन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकने रोकते हैं, वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, और अल्लाह ताला तो साथ उसके जो वो अमल कर रहे हैं घेरने वाला, अल्लाह ने घेरा हुआ इनको। ये कौन किन लोगों की बात हो रही है? काफिर लोग जब निकले थे ना, तो उनका निकलना ऐसे था कि इतनी अपनी कुव्वत पे नाज था उनको, इतना अपने पे अपना फखर था, इतनी अपनी बड़ाई थी कि हम लोग तो बड़े बड़ी चीज हैं। वैसे भी उनको ये बड़ा फखर होता था कि हम कुरैश हैं, तो हम बड़ी चीज हैं, काबा के मुतवल्ली हैं। लेकिन बड़ी शानो शौकत के साथ ऐसे निकले कि अपने साथ गाने बजाने वाली लौंडियां ली हैं, और जहां पे हर जगह रुकते थे तो वहां पे गाने बजाने की मजलिसें होती थी, रक्सो सरूर की मजलिसें होती थी, फिर शराब पी जाती थी। तो बड़ी अपने आप को चीज समझते हुए, शो ऑफ करते हुए निकले। और वह यसुदूना अन सबीलिल्लाह, और किस लिए निकले कि एक ऐसे अल्लाह के बंदे को रोके जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, जो हक की तरफ बुलाने वाला, ये मकसद था ना उनका। उनका तो मिशन यही था कि इनको इतना सताओ और इनके साथियों को इतना सताओ कि ये अल्लाह का रास्ता छोड़ दें और इस रास्ते से हट जाएं, भाग जाएं। तो ये अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए निकले। अपनी तरफ से तो बड़ी खदमत कर रहे थे कि हम तो कितने अच्छे लोग हैं, कि ये लोग कतई रहमी करने वाले हैं, हम तो सिला रहमी करने वाले हैं, ये तो तोड़ने वाले हैं खानदानों को, हम तो जोड़ने वाले हैं। तो इसीलिए तो वो काबा का गिलाफ भी पकड़ पकड़ के अबू जहल दुआएं कर रहा था कि अल्लाह हक वाले को आज फतह दे देना। तो वो थोड़ी सोच रहे थे कि हम अल्लाह के रास्ते से रोकने जा रहे हैं, ये शैतान आगे आ रहा है, यही बात आगे आ रही है कि शैतान देख लो कैसे ब्यूटीफुल करके दिखाता है। उन्होंने तो नहीं सोचा है, हम इंसान को वही अपना बुरा अमल ना ऐसे लगता है कि हम तो बड़े अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम तो उन लोगों को खत्म करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे खानदानों को तोड़ दिया। इन्होंने देखो कैसा मक्का के अंदर हम आराम से रहते थे, इन्होंने आके एक मुसीबत बना दी, अब घर घर टूटे हुए हैं, आप कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, देखो हमारा सारा सुकून चैन खत्म कर दिया इन्होंने। लेकिन हालांकि असल बात यह है कि वह सुद्धू नान सभी अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए वो निकले। तुम उनकी तरह ना हो जाना, हमें क्या बताया जा रहा है, वो तो उन्होंने जो किया सो किया। बतर कहते हैं फाड़ देने को, कोई चीज फट जाए ना, अपने वजूद से बाहर आ जाए तो वो बतर है। तो जो जो लोग इतराते भी हैं वो उनकी औकात नहीं है, वो उससे ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं। तो ये काफरों ने किया था कि ये निकले थे तो अकड़ के निकले थे, हम पूरे अरब को दिखाएंगे, हमारी धाक बैठेगी। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया, इसीलिए ईमान वालों को ऐसे रवैये अपनाने से रोक दिया कि डोंट बी लाइक देम। अब हमने कौन सा जंगों में निकलना, हाँ तो हमें क्यों फिर बताया जा रहा है कि भाई आप ना ऐसे करो, हमको जंग करने निकल रहे हैं? नहीं, तो फिर एक ओवरऑल बता दिया गया रवैया, बताया कि जो भी इस किस्म का तरीका है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अब वो चाहे जंग के लिए निकले, चाहे किसी भी और काम के लिए निकले, लेकिन ये तरीके अल्लाह को पसंद नहीं है कि इतराते हुए निकल रहे हैं, शो ऑफ करते हुए निकल रहे हैं, डींगे मारते हुए निकल रहे हैं, ये नहीं अल्लाह को पसंद। तो तुम ऐसा ना करना। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ताला को नहीं पसंद मुख्तालन फखूरा, खुद पसंद और फखर करने वाला। तो हमारे यहां कभी ऐसे निकला जाता है या नहीं? रियाकारी तो वैसे ही, अगर नेकी में की जाए तो शिर्क असगर है, लेकिन वैसे भी अल्लाह को रियाकारी नहीं पसंद, शो ऑफ। अच्छा देखें, आप सोचते होंगे कि पता नहीं वो तो उस जमाने के अंदर ऐसे वो निकले, हमारा इससे क्या ताल्लुक। मगर आप आज के अपने हालात देखें ना, अगर तो जंग तो छोड़ें, जंग में जीतना या जंग के लिए निकलना तो वो तो एक बड़ी बात है ना, लेकिन छोटी छोटी चीजों में ही हम यही रवैये अपनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी मैच हो गया, अब मैच में कोई कप जीत लिया किसी टीम ने, कोई वर्ल्ड कप जीत लिया, कोई कप कहीं से जीत के आए, उसके बाद कैसे घरों से निकला जाता, कैसे जिसको कहते हैं क्या कप ही एक जीता ना, खेल था, खेल तमाशा, खेल खत्म हो गया, खेल में एक ने जीतना था, एक ने हारना था, कोई जीत गया, खेल है। लेकिन उसको खेल नहीं समझा जाता, उसको तो वाकई जंग ही समझ लिया जाता है। ऐसे फतह का जश्न मनाया जाता है, उसको जश्न कहते हैं वाकई, नाचते हुए सड़कों पे निकल आते हैं, शोर शराबा हंगामा और वो हरकतें होती हैं कि आपे से बाहर हो जाते हैं। बाज जगह पे शराबें भी पी जाती हैं, ये तो सब चीजें वही तो होती हैं, वही नाच गाने होते हैं, वही सब चीजें होती हैं, वही बतर है, वही तराना, और जेस्चर्स भी वो दिखाते हैं कि इतराने वाले, हमने पता नहीं क्या कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बदर में फतह हासिल की थी, मुसलमानों ने भी, वो कितने एक वो ऐसे कुछ ऐसे काम करते हुए हमें पता चले हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा, उनके पास नहीं थी लौंडियां, वो भी न चाहते लौंडियों को, नहीं ऐसा हुआ। शराबों का उनको भी पता था, नहीं उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, ना ही इतराए, ना ही कोई शो ऑफ थी। और तो और इससे क्या बड़ी बात हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मक्का जब फतह हो गया, मक्का फतह होना का मतलब ये था कि उनका बड़ा बड़ी चीज एक आज हासिल हो गई है, मतलब कोई किसी का लेजेंड या कुछ को बहुत ही बड़ा कारनामा इतना बड़ा हो गया था कि जिसकी वजह से सारी दुनिया देख रही थी कि आप देखते हैं कि काबा किसके हाथ में जाता है, मक्का को कौन किसके पास आता है, वो ही हक पे होगा। मक्का फतह करना कितनी बड़ी बात थी, मगर हम कहीं नहीं पढ़ते कि लोग नाचने शुरू हो गए, लोगों ने तुम्हारे बदतमीजी शुरू किया, या औरतों की इज्जतों पे किसी ने हाथ डाला हो, या बूढ़ों बच्चों का किसी ने खून खराबा किया हो, या किसी ने ढोल बजाए हो, या कोई पार्टी टाइम हुआ हो, या दिन रात नाचते रहे हो, या कोई ऐसी बात मिलती नहीं है, क्योंकि वो खुशी को भी और वो जीत को भी अल्लाह की देन समझते थे, और हम अपने मार्के समझते हैं, हम अपने कारनामे समझते हैं, इसलिए इतराते हैं। इसी तरह सियासत के मैदान में देखना, कोई कैंडिडेट जीत जाए सही, फिर आप देखना जरा, आप देखें अल्लाह अकबर, सहाबा तो कोई ओहदा लेने से कतराते थे, वो कहते थे हमें ओहदे ना दो, उनको जबरदस्ती दिए जाते थे। हजरत उमर की खिलाफत में तो वो एक सहाबी को ओहदा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे ना इस पोजीशन में मुझे ना डालें, मुझे ना इस आजमाइश में डालें, और बात है तो मुझे तो डाल दिया तो मैं अब तुम्हें कैसे छोड़ दूं, यानी वो भागते थे इन चीजों से। और ये क्या करते हैं, ये जब जीत जाते हैं तो इसके ऊपर इतना जश्न मनाते हैं, या अल्लाह के ढोल पे नाच नाच के हलकान हो रहे हैं, नोटों की बारिश की जा रही है। ये तरीका होता है सदका और खैरात करने का, गरीब मिस्कीन लोगों के पैरों से उठा रहे हैं वो नोट और धक्के उनको दिए जा रहे हैं, वो एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, ये इनकी जीत की खुशी हो रही है, जिसमें गुरूर है, जिसमें अपनी बड़ाई है, जिसमें रियाकारी की इंतहा कर दी जाती है। और देख लें शादियां, देख लें आपकी, उनके अंदर भी क्या है, घरों से कैसे निकलते हैं बारात लेने के लिए, लेके जब निकलते हैं बारात तो कैसे निकलते हैं, अल्लाह अकबर। तो अगर देखना है ना इस्लाम का कल्चर क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या कभी शादियां नहीं हुई थी, उनको क्या कभी कोई जीत नहीं मिली थी, उनको भी फतुहात मिली, इससे बढ़ के मिली जो आज किसी को मिल सकती है, वो वाकई फतह तो फतह जिसको कह सकते हैं वो थी, विक्ट्री थी। हमारी क्या विक्ट्री है, एक कप लेकर आ गए विक्ट्री हो गई, एक कोई सियासत में जीत गया विक्ट्री हो गई, देखिए ये क्या विक्ट्री है। उनसे देखें उन्होंने उन विक्ट्रीज के ऊपर जो हक और बातिल के दरमियान थी, उसके अंदर जब कामयाबी मिलती थी तो उनके रिएक्शन क्या होते थे, तब आपको पता चलेगा कि जब खुशी मिलती है या कोई कामयाबी मिलती है तो हमें इस्लाम क्या सिखाता है, हमने कैसे रहना। लौंडियां नचा वो भी सकते थे, आज देखेंगे कैसे वो ऐसी औरतों को, आज लौंडियों को तो छोड़ें, वो अल्लाह ताला हमें माफ करे कि लोग अपने घर की बेटियों को, बीवियों को ही खड़ा कर देते हैं कि अब ये नाचेंगी सबके सामने, ये परफॉर्म करेंगी। तो हमारा कल्चर ये नहीं है, ये काफरों का तरीके हैं, ये उनका था कल्चर, और हमें खास तौर पे कुरान में इसे मना किया गया, तुम उनके जैसे तरीके ना अपनाना। वो इस तरह घरों से निकले थे, यानी किस चीज को नापसंद किया, घर से बतर के साथ निकलना, लोगों में दिखावे करना, इसको नापसंद किया गया। बात सिर्फ जंग की नहीं हो रही है, जंग में तो वो निकले ही थे, ऐसे तो जंगों में निकलना तब भी नहीं ऐसे निकलना, लेकिन उसके अलावा भी वला तकुनु, मत तुम हो जाओ उन लोगों की तरह, मगर हमने तो सारे ही उनके तरीके अपना लिए। और बल्कि हम कहते हैं कि ऐसे खुशी के मौकों पे तो क्या है, कोई हद नहीं है, बाज लोग ऐसी औरतें बुला लेते हैं जो आके नाचती हैं, फिर तो ये मुसलमान का तरीका है, ये एक मोमिन का खुशी मनाने का एक तौर है, अतवार है। वइज़ ज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, और जब याद करो जब शैतान ने उनके आमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिया, ये इसी तरह बदतर से निकलना, ये देखे ना अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और इसको बड़ा खूबसूरत शैतान ने बना दिया। नहीं, अल्लाह के रास्ते से थोड़ी रोक रहे हैं, इन्होंने देखो काम ही ऐसा किया। नहीं, तुम तो डिजर्व करते हो ना, तुम तो देखो बतर के साथ इतराते हुए ऐसे ही नहीं वो निकले थे। ये शैतान उनको सुझाता है ना, उनके बुरा अमल देखे निकल रहे हैं ये अल्लाह के नबी के साथ मुकाबले पे, और इसके ऊपर इतरा रहे हैं। यानी एक बुरा काम और उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी खुशी है उनको। बहुत सारे आज हमारी सोसाइटी में भी ऐसे काम है जो इतने बुरे हैं, कभी काम है इनसे हमारा दीन मना करता है, और शैतान ने उनको ऐसा खूबसूरत बना दिया, इतना ग्लैमराइज कर दिया है। और शैतान का यही तरीका है, वो कभी भी गुनाह को ऐसे नहीं लोगों को दिखाता, ये बुरा काम है तो तुम इसको कर लो, वो पागल ही होगा जो फिर भी कर रहे हो। वो तो ये दिखाता है कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, उसको ग्लैमर करके दिखाता है, उसमें ग्लैमर डाल के उसको इतना मुजयन कर देता है कि इंसान कहता है ये तो बड़ा अच्छा ही काम है। आज बुराई के कितने सारे काम आप देख लें, उसको कल्चर कहा जाता है, उसको मॉडर्निज्म कहा जाता है, उसको परफॉर्मेंस कहा जाता है, और भी इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो इस चीज को दिए गए हैं कि जो आर्ट कहा जाता है, ये आर्ट है ये जी हमारा। ये शैतान ने देखो कैसे मुजयन कर दिए, कैसे उन्हीं गंदे कामों को, बेहयाई के कामों को, फोहश कामों को कैसे खूबसूरत बना दिए। आप देख लें अब एक औरत बगैर हिजाब के, बगैर उसके बनी समरी किसी मर्दों की मजलिस में जाए तो उसको तो लोग बड़ी खूबसूरत समझते हैं, यार बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और क्या हसीना लग रही हैं। वहीं पे कोई ऐसी चली जाए जिसने बुरका पहना हुआ है, जिसने अपने आप को कवर किया हुआ है, तो कहते हैं ये क्या, बिल्कुल पता नहीं क्या, कौन से जमाने से उठ के आ गई। तो शैतान ने किस चीज को ग्लैमराइज किया बताएं, बुराई को ग्लैमराइज कर दिया। शैतान ने बुरी चीज को खूबसूरत बना के दिखाया, और ये ही उसका तरीका है। बतर को भी खूबसूरत बना के दिखाता है, रियाकारी को भी, हम कुछ भी हासिल कर रहे थे उसके बाद यही दिल चाहता है कि शो ऑफ करें, कपड़े अच्छे पहन लिए तो दिखाऊं किसी को, घर अच्छा ले लिया तो अब कोई देखे भी तो सही आके, अब मुझे चैन कहां से आएगा, अब एक पार्टी रखूं जिसमें सारे आके मेरी चीजें देखें, मेरे घर को देखें, मुझे देखें, बाल अच्छे कटवा लिए तो अब मैं बस जाऊं और ये बालों को खोल के जाऊंगी तो कोई देखेगा ना, किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने इतने खूबसूरत बालों का स्टाइल बनाया, मेकअप अच्छा किया तो मेकअप भी तो दिखाना है। रिया रिया, हमारी पूरी जिंदगी रियाकारी बन चुकी है, दिखावे। ये अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे ना बनना, इनके जैसे ना होना, अल्लाह हू अकबर। और ये हुक्म है ला तकुनु, मत हो जाना इनके जैसे, मुसलमान को पता ही नहीं कि हमारे कुरान में ये लिखा है। तो जब खूबसूरत बना दिया देखो शैतान ने उनके अमल को, वो निकल रहे हैं तकब्बुर के साथ, बजाय इसके कि शर्म करें कि क्या काम करने जा रहे हैं, तो वो इसके ऊपर उतराते फिर रहे हैं। वकाला, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा ला गालिब लकुम अल्यौम मिनन्नास, तुम पे तो आज कोई गालिब आ ही नहीं सकता, तुम पे कैसे कोई गालिब आ जाएगा, देखो तुम्हारी कसरत, देखो तुम्हारी बड़ाई, देखो तुम काबा के मुतवल्ली हो, काबा के खिदमत गुजार तुम हो, तो तुम पे कैसे आज कोई गालिब आ सकता है। वह इन्नी जारुन लकुम, और मैं तुम्हारा हमसाया हूं, यानी मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब हुआ ये था, शैतान के बारे में आता है कि क्या इसने वसवसा डाला या इंसानी शक्ल में आया, तो इमाम इब्ने जरीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि कुरैश का जब लश्कर निकला है ना मुसलमानों के मुकाबले में, तो उनके दिलों में एक खतरा था, वो ये था कि इनका एक दुश्मन कबीला था बनू बकर, तो ऐसा ना हो कि हम निकलें और वो देखें वो जो काफिला है वो भी नहीं पहुंचा हुआ, कुछ ये भी सारे निकल खड़े हों, तो पीछे से ये ना हो कि वो मक्के को खाली देख के तुम्हारे घरों पे हमले करते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि जब अबू सुफियान ने घबराई हुई फरियाद भेजी है ना कि भाई जल्दी आओ, मुझे तो खतरा है, जल्दी पहुंचो, और ऐसे होने लगा, तो ये जल्दी से निकल खड़े हुए। लेकिन अब इनको परेशानी हो गई कि ये हमने, ये ना पीछे से हमारे साथ ये हो जाए। तो अब शैतान जो था वो सुराका बिन मालिक की सूरत में इस तरह से सामने आया कि उसके हाथ में झंडा था और उसके साथ एक, जैसे एक लश्कर भी था पीछे, फौज। तो सुराका बिन मालिक उसका इलाका और कबीला तो था, उसका ये बड़ा सरदार था उस इलाके का जिनसे हमले का खतरा था। तो उसने आगे बढ़ के इनको कहा कि तुम फिक्र ना करो, आज तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता, तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारी कुव्वत देखो कितनी है, तुमसे कौन टकरा सकता है, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कोई तुम पे हमला नहीं करेगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, बेफिक्र हो कि तुम आगे जाओ, तुम्हारा मुकाबला आज कोई कर नहीं सकता, और मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारे, तुम्हें कोई खतरा होगा तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तुम्हारा हामी हूं। तो अब सुराका बिन मालिक की बड़ी शख्सियत थी, बड़ा असर रसूख था, तो वो सुन के उन्होंने कहा अच्छा, अगर इतना बड़ा सरदार हमें ये गारंटी दे रहा है कि तुम्हें जो खतरा लगा हुआ है तुम इससे बेफिक्र हो जाओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और तुम आज वहां पे भी तुम आगे बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारे मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर देखो इसका मतलब कुछ ठीक ही होगा। तो अब वो बड़े मुतमईन हो गए। अब हुआ क्या, फलम तरा अतिल्फी अतानी, और तो जब आमने सामने हुए, जब देखने लगे लश्कर एक दूसरे को, एक दूसरे के आई टू आई कॉन्टेक्ट हुआ, जब उनके आमना सामना हुआ, तो नकस आला अकबई ही, तो वो उल्टे पांव अपनी एड़ियों के बल पलटा, वकाला, और उसने कहा इन्नी बरी उन, मैं तो बेशक बरी हूं, मिनकुम तुमसे, इन्नी अरा मा ला तरौना, मैं जे तो वो नजर आ रहा है जो तुम्हें नहीं नजर आ रहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सज़ा देने में बड़ा सख्त है। अब ये क्या उसने देख लिया, और क्यों ये उल्टे पैर पलटा है और भागा है, पहले तो इनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन जब इसने देखा सामने के सामने तो फरिश्तों के लश्कर उतर रहे हैं जिब्राइल और मीकाइल की लीडरशिप में, तो उसको तो पता था ना कि ये तो, अब उसको समझ आ गई कि ये क्या हो गया, तो अल्लाह ताला की तरह से फरिश्ते उतर आए हैं। तो जब इसने ये देखा तो घबरा गया। उस वक्त इसका हाथ एक कुरैशी जवान हारिस बिन हिशाम के हाथ में था, फौरन उसे अपना हाथ छुड़ा के भागना चाहा, तो हारिस ने टोका ये क्या करते हो, तो उसने, शैतान ने उसके सीने पे मार के उसको गिरा दिया और अपने शैतानी लश्कर को लेके भागा। तो उस हारिस ने उसको सुराका समझा था, तो उसने कहा तुम अरब के सरदार हो, तो तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा साथ हूं और मददगार हूं, और अब ऐन मैदान के जंग में तुम ये काम कर रहे हो। तो शैतान ने सुराका की शक्ल में ही था ना, तो उसने कहा कि मैं इस मुआहिदे से बरी हूं जो मैंने तुमसे वादा किया, मैं इससे बरी हूं, क्योंकि मुझे वो नजर आ रहा है जो तुम्हें नहीं नजर आ रहा, मतलब फरिश्ते, तो मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकता। तो उसको पता था ना कि फरिश्तों की ताकत क्या है और अब क्या होने क्या वाला है यहाँ पे। कतादा फरमाते हैं अपनी हदीस में, सॉरी अपनी तफसीर में, कि उसने झूठ बोला है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, अगर वो अल्लाह से डरता होता तो नाफरमानी क्यों करता, मगर दूसरे मुफसरीन ने लिखा है कि डरना अपनी जगह सही था, वो वाकई अल्लाह से डरता है, लेकिन उस डर का क्या फायदा जिसमें ईमान ही नहीं है, अतात ही नहीं है, और उन्हें उसको पता अच्छी तरह है कि अल्लाह ताला का अजाब कितना शदीद है। तो अबू जहल ने जब ये देखा ना कि ये शैतान तो भाग रहा है, उसने तो यही समझा ना सुराका है, तो उसने जब ये देखा कि सुराका तो भाग रहा है, तो अब ये ना हो कि मेरा लश्कर भी, इसको भी हिम्मत टूट जाए, तो उसने कहा कि तुम इसके जाने से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसने तो वैसे ही अंदर से ही डील की हुई है उनके साथ, उन मुसलमानों के साथ इसने डील की हुई है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये लोग मक्का वापस आए और उनमें से किसी की मुलाकात सुराका मुल मालिक के साथ, असल वाले के साथ हुई, तो उसने सुराका को मलामत की कि तूने हमारे साथ ये किया उस दिन बदर के दिन, और तेरी जिम्मेदारी है जो हमें नुकसान हुआ, और तूने तो कहा था ये और ऐसे किया तूने, तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ था ही नहीं, ना मैं किसी काम में शरीक था, मुझे क्या पता तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तो ये शैतान की आम आदत है, वो इंसान से वादे करता है मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और उसके बाद जब वक्त आता है तो वो भाग जाता है। सेम एग्जैक्ट चीज कयामत के दिन होगी कि वो लोग उसको मलामत करेंगे, तूने कहा अब हमें बचा यहां से, तेरे कहने पे हम इस पे चले थे, तो वो कहेगा मैंने क्या तुम्हें कहा था, तुम्हें अल्लाह ने जो वादे दिए थे तुमने उनके ऊपर खुद ही नहीं यकीन किया, तुम मेरे पीछे चल पड़े, मैं तो तुम्हें वसवसा ही डालता था, मेरा क्या है। तो वो उस दिन साथ छोड़ जाएगा। ये जो आज शैतान उन लोगों के साथ है ना जो बुराई में पड़े हुए हैं, और इनको सुहाने ख्वाब दिखाता है और कहता है कुछ नहीं होता, तो उस दिन इसने किसी के साथ नहीं होना। इज यकुलुल मुनाफिकुन वल्लदीन फी कुलूबिहिम मरद, जब कह रहे थे मुनाफिक भी और वो लोग भी जिनके दिलों में मर्ज था। किनके दिलों में मर्ज था? यहूदी भी हो सकते हैं, कुरैश भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, अब उनके ईमान में वो पुख्तगी नहीं थी, वो भी हो सकते हैं। तो मुनाफिक लोग और ये लोग भी, ये सब क्या कह रहे थे, यानी उस वक्त सारे ही लोग क्या कहने लगे थे सिवाय पक्के सच्चे मोमिनों के, इन सब की जुबान पे एक बात थी, क्या थी? गर रहा उलाई दीन, यानी कि दीन ने तो इनको धोखे में डाल दिया, यानी बड़े अपने दीन की वजह से समझ रहे हैं कि जो है ना ये इतने बड़े लश्कर से जाके टकरा जाएंगे, लड़ लेंगे, इनको क्या पता, देखो इनको इनका दीन की वजह से ये जोम में आ गए, अपने दीन की वजह से ये समझने लगे हैं कि ये किसी से भी टकरा सकते हैं, इनके दीन ने इनको बेवकूफ बना दिया, धोखे में डाल दिया, खपती बना दी, जैसे आज भी किसी को कह देते ना ये तो फनेटिक ही हो गया, खपती बना दिया। तो दीन में ये ऐसे दीवाने हो गए, अक्ल से काम नहीं ले रहे, क्योंकि आंखों देखा तो ऐसे नहीं लग रहा था ना कि ये जीत सकते हैं, आंखों देखा तो यही लग रहा था कि मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो कहते कौन सी अकल की बात है ये, हालांकि वो नहीं जानते, क्या नहीं जानते, व मन यतवक्कल अल्लाह फइन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इनको क्या पता, इनको पता ही नहीं कि जो अल्लाह पे भरोसा कर लेना फिर अल्लाह ताला अजीज और हकीम है, गलबे वाला है और हिकमत वाला है, सुभान अल्लाह। ये बातें बनाने लगे हैं कि ये देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये तो हमाकत है इस वक्त ये काम करना, इनको पता ही नहीं कि उन्होंने किस पे भरोसा किया हुआ। वलऊ तरा इज यतफल्लदीन कफरू, और काश तुम देखो जब फौत कर रहे थे उन लोगों को, किन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कौन फौत कर रहे थे, अल मलाइकतु, मलाइका फौत कर रहे थे, यदरिबूना वुजूहा, हम तो को कैसे उनको फौत कर रहे थे, यानी जब इनकी जानें निकाल रहे थे फरिश्ते, तो इनको कैसे फौत कर रहे थे कि मारते थे इनके चेहरों को और इनकी पीठों को, और क्या कहते थे, वधूकु अदाब अलहरीक, और वो कहते थे चखो आज जलने का अजाब चखो। अल्लाह अकबर, ये बताया जा रहा है वो बदर में भी, जिस वक्त काफरों की जानें निकालने के लिए फरिश्ते उनकी उनके साथ जो सलूक कर रहे थे और उनको जो कहते थे वो भी बताया जा रहा है, और उमूमी तौर पे भी, वैसे भी जो कोई कुफर के ऊपर मर जाए तो जब काफिर की जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो उसको मार मार के उसकी जान निकालते हैं, क्योंकि उसकी रूह निकलना नहीं चाहती, वो उसके जिस्म के अंदर आगे पीछे होती है कि मैं किसी तरह बच जाऊं। तो उस वक्त में फरिश्ते उसको मार मार के निकालते हैं, और उसकी जान ऐसे निकलती है जैसे हदीस में आता है जैसे गीली ऊन के अंदर से सलाख निकाली जाती है ना, तो वो गीली है चूंकि, तो जब उसमें से खींचेंगे सलाख को तो सारी तार तार हो जाएगी, इस तरह उनकी उनकी उनका जिस्म हो जाता है। तो मरते ही आग में चले जाएंगे, ज़ूक़ू अज़ाब अलहरीक। ये जब उनकी तरफ से ये पैगाम आता है ना चखो आग का अजाब, और जब जब उनकी तरफ से मारें पड़ती हैं, तो ये सुन के रूह उसके जिस्म में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो काफिर की मौत के बाद की अजियत का यहां पे जिक्र किया गया। दुनिया में इतराते फिरते हैं, दुनिया के अंदर इनके फखर खत्म नहीं होते, रियाकारियां खत्म नहीं होती, लेकिन देखो मौत कैसी, मौत का वक्त इनका कैसा है। क्या पाया फिर, क्या कामयाबी रह गई? कोई कामयाबी इनकी कामयाबी नहीं है, ये धोखा है, सिर्फ चंद दिन का धोखा। आंखें तब खुलेंगी जिस वक्त मौत आएगी, फिर पता चल जाएगा हक क्या था। तो काश तुम देख सकते उस वक्त जबकि इनके साथ ये हो रहा होता है हशर इनका। और देखें अब यहाँ पे कहा गया ज़ूक़ो अज़ाब अल-हरीम, उनको कहा जाएगा या उन आ, 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 कहा जाएगा, ये लफ्ज़ नहीं यहाँ पे, और चखो अज़ाब अल-हरीम, जलने का अज़ाब। तो क्या मरते वक्त ही उनको कह दिया जाता है जिस वक्त उनकी जानें निकाली जाती हैं? अभी तो क़यामत आई ही नहीं। तो इससे उलमा कहते हैं कि ये दलील है अजाब कब्र की, कि उसी वक्त उनको जलने का अजाब होने लगता है, क्योंकि अभी कयामत नहीं आई। तो फिर वरना इस आयत में क्या कहा जा रहा है, अभी तो आई नहीं कयामत। इसका मतलब कब्र में भी इंसान को जजा या सजा इनमें से एक चीज मिलना शुरू हो जाती है। अब वो कितना हैबतनाक मंजर है कि ऐसी मखलूक और फिर ऐसी पिटाई और फिर ऐसी ऐसी खबर किसी को दे देना, सिर्फ इससे ही उसी को वैसे ही कह दिया जाए कि अब देखना तुम्हारे लिए आगे अजाब है। वो तो वहम में, चाहे कोई झूठी कोई बात कह रहा होगा ना, लेकिन ये बंदा उस बात से परेशान हो जाएगा, अजाब का लफ्ज ऐसा। लेकिन इनको जब वहां पे मार मार के ये हाल किया जाएगा तो सोचेंगे उस वक्त उनके ऊपर गुजरेगी क्या, क्योंकि उन फरिश्तों के पास तो लोहे के गुर्ज होंगे जिनसे मारेंगे, और उससे भी आग निकलती होगी। तो मरते ही जलने लगेंगे। अब इसका एक और सबूत है ना कुराने पाक में ही है, कि जो फिरौन के बारे में भी है, और मेराज पे भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि उनको आले फिरौन को ले जाया जाता है, आग के ऊपर पेश किया जाता है। तो वो तो अभी कयामत ही नहीं आई, तो यानी बरजख में ये सारे काम उनके साथ हो रहे हैं, इसी को अजाबे कबर कहते हैं। अल्लाह अकबर, ज़ालिका बिमा कद्दमत अईदीकुम वअन्ना अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल-आबीद। ये इसलिए है कि ये इसलिए नहीं कि अल्लाह ने कोई इनके ऊपर जुल्म किया, ये इसलिए है कि जो इन्होंने इनके अपने हाथों ने आगे भेजा, ये इनकी अपनी कमाई, जो बोगे वो ही काटोगे। लेकिन है जो आप आखरत के लिए बना रहे हैं ना वो ही पाएंगे। आप दुनिया के अंदर भी चावल बोएं तो चावल ही काटते हैं, गंदम बोएं गंदम ही काटते हैं, ऐसा नहीं होता गंदम बोएं चावल निकला, ऐसा नहीं होता यहाँ पे कांटे बोएं और वहां पे फल निकला, ये नहीं होगा। यहाँ जो बीज डालेंगे वही वहां पे काटेंगे। तो इंसान की अपने ही हाथों की कमाई है। यानी ये सारा पढ़ के कोई ये ना सोचे कि हाय कितना जुल्म हो रहा है इनके साथ, नहीं, इन्होंने खुद ही ये किया अपने लिए। वो अल्लाह ताला किसी पे जुल्म करने वाला नहीं है, लैसा बिज़ल्लामिन लिल-आबीद, अपने बंदों पे जुल्म करने वाला हरगिज नहीं है अल्लाह ताला। वो इंसान ना इंसाफी नहीं करता, उसने खुद अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे दिया, जुल्म को अपने ऊपर हराम किया अल्लाह ताला ने। हदीसे कुदसी में है कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है, तो मेरे बंदो तुम भी किसी पे जुल्म ना करो। वो ना खुद जुल्म करता है ना जुल्म को पसंद करता है। लिहाजा जिसको भी जो सजा मिल रही होगी ना, चाहे वो जहन्नुम में जल रहा है, चाहे फरिश्ते उसको मार रहे हैं, चाहे कुछ भी सजा मिल रही, वो उसकी अपनी हाथों की कमाई होगी। यार इसके ऊपर तो और भी दुख होगा ना, यहाँ मैंने अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया, मैंने अपनी जिंदगी को खुद ही आग लगा दी। कदाबी आले फिरौन वल्लदीन मिन कब्लिहिम, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आले फिरौन का हाल हुआ था और उनसे पहलों का हाल हुआ था। यानी इनके साथ जो मामला है वो उसी तरह है जैसे कि आले फिरौन और पिछली कौमों के साथ मामला हुआ था। अल्लाह अकबर, आले फिरौन के साथ भी क्या हुआ था, उनको भी उनके घरों से निकाल कर और गर्क कर दिया गया, और इन काफिरों को भी इनके घरों से निकाल के बाहर और मैदान जंग में इनको ला के और इनको खत्म किया गया। जो भी मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे गए थे उनको फॉलो करते हुए कि इनको पकड़ेंगे, इनको नहीं छोड़ना हमने, और खुद ही गर्क हो गए। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए कि हमने इनको नहीं छोड़ना, और ये भी खत्म हो गए। वल्लदीना मैंने कबली, और इनसे पहली कौमों का भी तो यही हाल हुआ, जो पहली कौमें भी थी, आद, समूद, कौमे नूह, कौमे शुएब, कितना कौमों का आप सूरह आराफ में पढ़ चुके, बड़ी बड़ी शानो शौकत वाली कौमें, देखें कैसे वो भी खत्म हो गए। इनका भी यही हाल, इनको अल्लाह ने यहाँ पे मैदान जंग में लाके मारा, उनके ऊपर बाज पे जो इन कौमों पे अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से अजाब टूटे। इसको कहते हैं तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों से तज़कीर करना, नसीहत करना। ये वो दिन है जिनमें कौमों के ऊपर अजाब आए थे। पिछली कौमें जो है ना, उनकी हिस्ट्री से सिखाया जा रहा है, उनका हवाला, उनका रेफरेंस दे के नसीहत की जा रही है कि कफरू भी आयातिल्लाह, उन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयात का, अखदहुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको पकड़ा किस वजह से, इकोनॉमी खराब हो गई थी उनकी, महंगाई बहुत हो गई थी उनके पास, फौजें कम थी उनके पास, किस वजह से उनके ऊपर ये सारी मुसीबतें आ गई, ये अजाब आ गए, बिदुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, यानी गुनाह जो होते हैं ना उनकी वजह से पकड़ आती है। और यहां पे देखें, यहां पे ये नहीं आया अभी कि अल्लाह ने उनको हलाक किया, एक बात याद रखें, क्योंकि इसी से सिमिलर आयत आ गई, आगे आ रही है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हलाकत की बात की है, जो लास्ट 54 आयत हम पढ़ेंगे। अभी क्या है ये आपको थोड़ा सा समझ लें इस बात को, इसमें और उस आयत में फर्क, क्योंकि सेम आयत स्टार्ट होगी लेकिन उसमें आगे आएगा ये नहीं आएगा, फअखदल्लाहु बिदुनूबिहिम फअहलकनाहुम बिदुनूबिहिम आएगा। तो पकड़ लिया अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से, ये पकड़ क्या आई थी, ये किस पकड़ की बात हो रही है, और आगे आगे आ रहा है हलाकत की बात। याद रखिए इस वाली आयत के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है ना, जब लोग कुफर करते हैं, रसूलों की नहीं सुनते, गुनाहों में डूब जाते हैं, तो उनकी जो पकड़ आती है वो छोटे अजाबों से शुरू होती है, वार्निंग साइंस होते हैं ये अजाब। जैसे मसलन कौमे फिरौन के ऊपर आए ना, हम पढ़ चुके हैं पिछली सूरत के अंदर, मेंढकों के अजाब, खून का अजाब, जुओं का अजाब, ये सब अजाब थे ना, इसमें ये खत्म नहीं हुए, लेकिन ये वार्निंग साइंस थे, ये छोटे छोटे अजाब थे, और अल्लाह ताला ने ये छोटे अजाब दे के उनको समझाना चाहा कि वापस आ जाओ, पलट आओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो उन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयत, फअखदहुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम, अल्लाह ने पकड़ लिया उनको उनके गुनाह की वजह से। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला पहले छोटे छोटे अजाब भेजता है, जब लोग गुनाह करते हैं ना तो इन गुनाहों की बड़ी नहुसत है, इनकी वजह से मिसाल के तौर पे ऐसे वबाएं फूटती हैं, ये पेंडेमिक्स जो हैं, ये यहाँ दुनिया के अंदर कत्लो गारत, यहाँ दुनिया के अंदर बदअमनी, बेचैनी, सुकून का उठ जाना, बारिशों का ना होना, अच्छा नहीं, अल्लाह ताला इस तरह से उनको वार्निंग देता है, और वो वार्निंग साइंस जो होते हैं ना वो इसलिए होते हैं ताकि लोग पलट आए। इन्नल्लाह कवीयुन शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला बहुत कवी है, बहुत ताकतवर है, वो चाहे तो वो उसी वक्त उनको खत्म भी कर सकता है। अब अल्लाह ताला उनको उस वक्त सिर्फ वॉर्न करता है, फौरन ऐसे नहीं पकड़ लेता कि बस थोड़ा सा ही लोगों ने कुछ किया तो उनके ऊपर फौरन अजाब आ गया और वो सारे खत्म कर दिए गए, मिटा दिए गए, मिल या मीट कर दिए गए, कौम को दुनिया से हटा दिया गया। तो अब पता चलता है कि सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होती है कि अल्लाह ताला वार्निंग्स भेजता है, वार्निंग्स भेजता है, लोगों जाग जाओ, लोगों समझ लो, लोगों अकल कर लो। देखें जब लोग अकल नहीं करते, पलटते नहीं हैं, और कहते हैं मजाक उड़ाते हैं, ये देखो इन मौलवियों का तो काम ही है, जो चीज़ आती कहते हैं बस तौबा करो तो गुनाहों का नतीजा, देखो जरा इनको भला ये तो इसी तरह पेंडेमिक आते ही हैं, 100 100 साल बाद आ जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं, वो चीज तैयारी नहीं की हुई थी, इसका ऐसे किया हुआ था, ये तो आना ही था, ये तो हर 100 ईयर बाद आता है, ये तो फलां होता है, इस तरह की बातें। तो समझते नहीं है, फिर भी संभलते नहीं है, फिर भी इस चीज को सोचते नहीं है ये हमारे ऊपर क्यों आए। हालांकि अभी तो अल्लाह ताला लोगों के अमाल के हिसाब से उनकी पकड़ करने लगे ना, तो जमीन पे कोई चलने फिरने वाला आपको नजर ना आए, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत होती है कि वो बस हिलाता है, हिलाता है, झंझोड़ता है, जिसको कहते हैं ना झंझोड़ना, तो वो झंझोड़ता है कि जो है ना बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, अभी भी टाइम है। ज़ालिका भी अन्न अल्लाह लम यक मुगैरन नियमतन अनअमहा, ये इसलिए कि अल्लाह ताला लम यकु नहीं है मुगैरन बदलने वाला किसी नेमत का, जो उसने नेमत किसी कौम पे की भी है अल्लाह ताला उस नेमत को बदलता नहीं है। हत्ता युगैरु मा भी अनफुसिहिम, यहां तक कि वो कौम खुद ही जो उनके नफ्सों में उसको बदलते, यानी अल्लाह कभी भी जो नेमतें उसने किसी कौम पे की हुई है उनको वापस नहीं लेता। बदलने का मतलब क्या है, उनको वापस ले लेना, पहले दी हुई थी उसको वापस लेनी, नहीं लेता जब तक के वो ना बदल दें जो उनके नफ्सों में। क्या मतलब वो बदना बदल दें जो उनके नफ्सों में, यानी वो कौम बिगड़ जाए, वो कौम गुनाह करने लगे, वो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में पड़ जाए। जब तक वो ऐसे नहीं करती उस वक्त तक अल्लाह ताला वापस नहीं नियमते लेता, नियमते यानी छिनने का कोई वजह होती है, नेमत पहले मिली भी थी, अब वो नेमत नहीं है, अब हम उसकी वजह तलाश करते हैं क्यों हमसे छिन गई, तो उसकी वजह ये होती कि आप खुद बदल गए, आपने अपने हालात जो पहले थे वैसे नहीं रखे, आपके हालात बिगड़ गए। इसका मतलब है कि कौमों के ऊपर जो जवाल आता है, कौमों से जो नेमतें छिनती हैं, उनकी ये है वजह, ये है रीजन जो कुरान बता रहा है। हम लोग सोचते हैं ये चीज खराब, ये वो खराब, उसकी वजह से ऐसे, उसकी वजह नहीं, किसी की वजह से नहीं। पहले चीजें सस्ती थी अब महंगी हो गई हैं, आप किसी की अफोर्ड में ही नहीं है, कोई ले ही नहीं सकता, क्यों ये हमसे नेमत छिन गई, कोई हमारे अपने कसूर है, ये कुछ वजूहात होती हैं छिनने की। तुम बदल जाते हो तो अल्लाह भी नेमत वापस ले लेता है, यू डोंट डिजर्व इट नाउ। इंसान जब खुद साबित करता है ना कि मैं नहीं डिजर्व करता, तभी अल्लाह वापस लेता है, ऐसे नहीं लेता। तो बंदे अपने आप को बदल लेते हैं, अल्लाह भी नेमत वापस कर लेता है, नेमते उसकी धीमी है। पहले तुम्हारे आमाल बेहतर थे, अच्छे थे, उनको बदल के जब बुरे आमाल शुरू कर लिए तो अल्लाह की नेमत भी चली गई, वापस चली गई, उठ गई। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, अल्लाह ने इनको नेमतें दी हुई थी कुरैश मक्का को, ये बड़े अल्लाह ताला के घर के मुतवल्ली थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, खिदमत करते थे, मुसाफरों का ख्याल करते थे, मेहमान नवाजियां करते थे, बड़े सिला रहमी आपस में रखते थे, फिर इन्होंने अपनी हालत बदल दी, इन्होंने बजाय इनके पास नबी आए, एक और नेमत अल्लाह ने दी थी उसकी कदर करते, उन्होंने सिला रहमी को कतअ रहमी से तोड़ दिया, जो आते थे कभी आज तक किसी को मना नहीं किया था काबा आने से, उनको रोक दिया मुसलमानों को, मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग कर दी। तुम तो वो थे जो कराबतदारी का लिहाज करने वाले थे, तुम तो वो थे जो मेहमान नवाजी करने वाले थे, तुमने बदल दिया तो अल्लाह ने भी अपनी नेमत उठा ली, अल्लाह ने इनको अमान दी भी थी। इसी तरह आप हर कौम के लिए ये असूल है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सब कौमों को ये समझना चाहिए कि नेमत उनसे जब छिनती है तो उसके पीछे में क्या हालात होते हैं। अब वो बैठ जाते हैं तबसरे करने के लिए, डिस्कशंस हो रही हैं जी, बड़े बड़े लोगों को बुलाया हुआ जी, हमारे साथ ये हो गया, क्यों हो गया, क्या ऐसा हुआ, नहीं, तुमने कुछ ना कुछ किया जिसकी वजह से ये हुआ, अल्लाह नेमत ऐसे नहीं छीनता। वअन्न अल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और यहाँ पे हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि बाज दफा हम बहुत शिकायतें करती हैं कि करप्शन बड़ी है, फलाना चीज बड़ी है, अमनो अमान नहीं है, फला नहीं है। हमें देखना यह है कि अफराद अपने आप की तसहीह करें, यानी इसमें इस आयत के अंदर हमें ये नुस्खा बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो नियमतें हैं उनको लेने का या उनको रखने का तरीका क्या है कि उनका जवाल ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि अफराद अपने आप को सही करें, अपनी हालत बदलें। अल्लाह भी उनकी हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत ना बदले, ठीक है? तो जब इंडिविजुअल्स अपने आप को बदलेंगे ना, तो तब पूरी सोसाइटी के अंदर भी चेंज आएगा। जब हम ये कहते रहे ना, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, ये फलां की जिम्मेदारी है, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग तो ऐसे करते करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, ये बात है असल सोचने की। अगर मैं भी करप्ट हूं तो फिर मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ कि करप्शन बहुत है? अगर मैं भी रिश्वत देने के लिए खड़ी हो जाती हूँ जब मेरा काम नहीं बन रहा होता, तो मैं ये क्यों शिकायत करती हूँ कि रिश्वत यहाँ पे बहुत है? जब मैं भी वही चीज, वही बेईमानी करने के लिए आमादा हो जाती हूँ जिसकी मैं हर बार शिकायत करती हूँ, बेईमानी बहुत है, बेईमानी बहुत है, मैं भी वही बेईमानी करती हूँ जब मेरा वक्त आता है, तो मैं क्यों शिकायत करती हूँ कि बेईमानी बहुत है? तो अफराद को बदलना होगा, तब है कि अल्लाह ताला उनकी नियमतों के तगैयुर से उनको बचाए। अगर अफराद नहीं बदलते तो पूरी की पूरी कौमों से नियमतें छीन ली जाती हैं। तो आज बहुत सारी नियमतें हमारे मुल्क से छीनी हैं, बहुत सारी, मुसलसल मतलब नीचे की तरफ ही आते हुए नजर आए, बहुत सारी नियमतें थीं और वो चली गई। तो इसका जवाब आज मिल गया। कदाबी आले फिरौन वल्लदीन मिन कब्लिहिम, जैसे आले फिरौन का हाल हुआ था और जो उनसे पहले का, फर्स्ट स्टेप में उनको भी मुसीबतें छोटी छोटी भेजी गई, छोटी छोटी परेशानियां आई, छोटे छोटे अजाब आए, मगर वो समझे ही नहीं ना बात। तो फिर कज़्ज़बू भी आयात रब्बी, उन्होंने अपने रब की आयात का से तकजीब की। फिर उसके बाद क्या हुआ, फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने हलाक कर दिया उनको उनके गुनाहों की वजह से। फिर खत्म, फिर फाइनल बात आ गई। एक एक वक्त तक छोटे छोटे अजाब होते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह का फैसला आ गया, हलाक कर दिया। वह अगरकना आले फिरऔन, और आले फिरऔन को हमने गर्क कर दिया। वह कुल उन कैनू जालिमीन, और सब के सब वो जालिम ही थे, अपने जुल्म की वजह से वो इस अंजाम को पहुंचे। ठीक है ना, उस वक्त तो लोग भी मान जाते हैं। सूरह आराफ के स्टार्ट आप याद करें कि उसमें हमने पढ़ा था कि जब कौमों के ऊपर अजाब आते हैं तो फिर वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम जालिम थे, हम जालिम थे, हमने जुल्म किया, हमने वाकई जुल्म किया। तो इससे पता चलता है कि देखिए, जो अल्लाह ताला की बात को झुठलाना है ना, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना, अल्लाह ताला की शरीयत को कबूल ना करना, इसका इनकार करना, और ये सब चीजें, या अल्लाह के कानून को रिजेक्ट करना, ये इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। फिर ये चॉइस नहीं है कि हमने मानना है या नहीं मानना। अगर अपनी बका चाहते हो इस दुनिया में, अजाबों से बचना चाहते हो, तो अल्लाह की फरमाबरदारी में आना पड़ेगा। आखरत में तो जो है वो तो है ही, लेकिन इस दुनिया को भी अगर आप पुरसकून बनाना चाहते हैं अपने लिए, अपने लिए यहाँ पे जिंदगी की मोहलत चाहते हैं, अजाबों से बचना चाहते हैं, नेमतों के जवाल से बचना चाहते हैं, तो जरूरी है कि अल्लाह ताला की आयात को माना जाए और उनके ऊपर चला जाए। अल्लाह ताला हमें इनका पाबंद बनाए, अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करने आसान फरमा दे, अल्लाह ताला अपनी फरमा बरदारी हमें अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين